ये मुर्गी के बच्चे जब चलेंगे और वो डकलिंग्स वो छोटे छोटे बतख के बच्चे चलेंगे, चलते 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 अगर दरिया आ गया तो ये मुर्गी के जितने बच्चे हैं ये बिल्कुल दरिया के किनारे धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए चलेंगे और वो बतख के बच्चे वो डकलिंग वो सब के सब दरिया में कूदेंगे और दरिया में डुबकियां लेकर पानी में खेलने लगेगी। अरे उसी मुर्गी ने हैच किया था, सब साथ में निकले थे, किसने इन इस डक को सिखा दिया, इन डकलिंग्स को सिखा दिया कि तुम पानी में तैर सकती हो, किसने उस चिकन को बता दिया कि तुम पानी में मत जाना वरना खतरा हो जाएगा। वो जात जो इन अंडे से निकलने वाले बच्चों के दिल में ये बात डाल देती है उसी जात को अल्लाह कहा जाता है। वही अल्लाह है जो बच्चे के पैदा होते ही उसे ये समझ दे देती है कि तुम दरिया में जा सकते हो और तुम दरिया में नहीं जा सकते। नन्ना सा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपनी मां का दूध ढूंढता है। कौन वो जात है जो इस नन्ने से बच्चे को ये सब कुछ सिखा देती है, उसी जात का नाम अल्लाह है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने बड़े बड़े इमाम थे उस जमाने में कुछ लोग थे जो नास्तिक किस्म के देहरिया किस्म के थे, जिनका ये अकीदा था कि अल्लाह कोई चीज नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, एक साइकिल है, एक सिस्टम है जिसकी बिना पर सारी चीजों का एग्जिस्टेंस है। तो उस जमाने में इन इमामों से सवाल होता, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा और सवाल किया कि क्या प्रूव है आपके पास कि अल्लाह का वजूद मौजूद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये इंसानों पर एक नजर डाल दो, सबका मटेरियल सेम, सबकी फैक्ट्री सेम, एक ही जगह पर यह प्रोडक्शन तैयार हुआ है, लेकिन देखो चेहरे चेहरे में फर्क है, एक इंसान दूसरे इंसान से कितना जुदा नजर आता है। वो कौन सी जात है कि जिसने इतने इंसान बनाए, हजरत आदम अलैहि सलाम के जमाने से कयामत तक इंसान आएंगे, मर्द भी है औरत भी है, सबके चेहरे जुदा, बच्चा पैदा हो रहा है बच्ची पैदा हो रही है उनके चेहरे जुदा, उनके बदन पर स्पॉट्स अलग अलग, यहां तक के हाथ की लकीरें भी डिफरेंट, हाथ में जो अल्लाह ने लाइन्स और लकीरें नाई वो भी डिफरेंट। वो कौन सी जात है जो ये काम कर रही है? कभी कभी किसी मां को ट्विन्स हो जाता है, कभी ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, और उस वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बच्चों की शक्ल बिल्कुल सेम मालूम होती है, लेकिन गौर करो तो उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। ये कौन सी जात है कि जो इस किस्म की तब्दीली करती है, एक ही इंसान बना रही है, वही नाक उस जगह पर, आंख उस जगह पर, कान उस जगह पर, पूरी बॉडी का सिस्टम और ढांचा सेम, फिर भी सूरत अलग अलग, आवाज अलग अलग। अल्लाह ने सबको साउंड बॉक्स दिया है, सबकी आवाज है, लेकिन आवाज आवाज में फर्क है। कोई बहुत पस्त आवाज वाला, कोई बहुत बुलंद आवाज वाला, कोई बहुत ही प्यारी आवाज वाला, कोई बहुत ही भद्दी आवाज वाला, आवाज अलग अलग, सूरत अलग अलग, आदतें अलग अलग। यही वो जात है, इमाम शाफी अल रहमान ने फरमाया कि जिस जात ने ये सारी तब्दीलियां कर दी है उसी जात को अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं। ऐसा ही सवाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप बताओ अल्लाह का वजूद कैसे मानेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दरख्त पर जो पत्ते नजर आते हैं, ये पत्ता जब कोई बकरी खा लेती है, कोई गाय खा लेती है, कोई और जानवर खा लेता है, तो ये खाने के बाद में नजासत और गोबर की शक्ल में बाहर आता है, मैंगनी की शक्ल में बाहर निकलता है। यही पत्ता बकरी ने खाया तो यह पत्ता मैंगनी बनकर बाहर निकला, गंदगी बनकर बाहर निकला, और इसी पत्ते को जब सिल्कवर्म खा लेता है तो उससे सिल्क बन जाता है, रेशम का कीड़ा खा लेता है उससे रेशम बन जाता है, इसी पत्ते को जब हनी भी खा लेती है तो उससे हनी और शहद बन जाता है, इसी पत्ते को जब ڈیئر کھا لیتا ہے تو اس سے مسک اور مشک بن جاتا ہے. کون ہے وہ ذات؟ پتا تو وہ ایک ہی تھا, جانوروں نے کھایا تو مینگنی بن گئے, اگر کسی شہد کی مکھی نے کھایا تو وہ ہنی بن گئی, ریشم کے کیڑے نے کھایا تو وہ ریشم بن گیا, ہرن نے اسے کھایا تو وہ مشک بن گیا. جو ذات یہ تبدیلی کرتی ہے اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب تھا, ہم اس اسپائڈر کو دیکھیں جو اپنا ویب بناتا ہے, کتنی باریک وہ تار ہوتے ہیں, کتنے باریک تاروں کے ذریعے سے وہ اپنا ویب بناتا ہے, اس ویب کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے. آج دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کوئی انجینئر ایسا ویب بنا کر بتائے جو وہ اسپائڈر بناتا ہے, اتنا ہلکا لیکن کتنا پیچیدہ, کتنا عجیب قسم کا وہ ویب تیار کرتا ہے. یہ طاقت اس چھوٹے سے کیڑے کو, اس اسپائڈر کو جس ذات نے دیا ہے اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, ایمان کا رینوویشن کیا کرو, ایمان کی ریفربشمنٹ کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید کیسے کرے, اس کا رینوویشن کس طرح ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, جتنا یہ کلمہ پڑھو گے جتنی یہ تسبیح پڑھو گے اللہ تمہارے ایمان میں تجدید پیدا کرے گا, پختگی پیدا کرے گا. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے رمضان کے مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی جائے, استغفر اللہ کی تسبیح کی جائے اور جنت مانگی جائے, جہنم سے پناہ مانگی جائے. اور پھر یہ اشرہ تو رحمت کا اشرہ, اللہ سے رحمت مانگے, وہ خدا رحمتیں لٹا رہا ہے, ہم اللہ سے رحمت مانگے, جتنی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو لٹائے گا. اس بنا پر کلمے پر ہمارا یقین ہو, اللہ کے وجود پر یقین ہو, جتنا ہو سکے خدا کا ذکر کرے تو, اور اس میں کوئی شک نہیں جو سچے دل سے خدا کو پکارتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار میں تاثیر رکھ دیتے ہیں, اس کی پکار پر لبیک کہہ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک آواز پر ایک آرزو پر اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. حضرت مولانا شیخ احمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ جنہیں بلبلے گجرات کہا جاتا تھا, بہت بڑے مقرر تھے, برطانیہ میں بھی ان کے کئی دورے ہوئے ہیں. حضرت شیخ مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے جامعہ حسینیہ راندیر کے گجرات کے. یہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا, چند نوجوان تھے, ایک مرتبہ انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا. ایک بوڑھے میاں کو پتا چلا, بوڑھے میاں نے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم لوگ حج پر جا رہے ہو, مجھے بھی اپنے ساتھ کر دو, بڑھاپا ہے, تم جوان لوگ ساتھ میں ہو, ذرا مدد بھی ہو جائے گی, میرا تعاون بھی ہو جائے گا اور میرا بھی حج ہو جائے گا. نوجوانوں نے سوچا کہ چلو بوڑھے میاں کو لے لیتے ہیں, ذرا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے, مزہ بھی آئے گا ان کے ساتھ میں, ان کی مذاق بھی کریں گے, ہنسی دل لگی بھی ہوگی, اپنا حج بھی ہو جائے گا, کوئی بوڑھا آدمی ہوگا تو دعا بھی کرتا رہے گا. نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے چچا تم بھی چل سکتے ہو, اور اس طرح ان جوانوں کے ساتھ میں یہ بوڑھے میاں بھی ساتھ میں حج کے لیے چلے. اب پورا حج کیا, مذاق مستی بھی ہوتی رہی, آپس میں باتیں بھی کرتے رہے, بہت کلوز ہو گئے وہ اس بوڑھے میاں سے, یہ نوجوان یہ ینگسٹرز. یہاں تک کہ حج پورا ہوا, طواف ودا کا وقت آیا. جب طواف ودا کا وقت آیا سارے لوگ طواف کرنے کے لیے گئے, آخری طواف تھا, طواف کر کے گھر پر جانا تھا. نوجوان تھے, جلدی جلدی انہوں نے طواف کر لیا, بوڑھے میاں بےچارے دھیرے دھیرے طواف کرتے رہے, یہ سارے جوان طواف کر کے باہر آ گئے. مطاف کے باہر آئے, یہاں پر آ کر انہوں نے سوچا کہ چلو آج چچا کو بیوقوف بناتے, اور انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا, ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک ایک چھوٹا چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا لے کر اپنے جیب میں رکھ دیتے ہیں, اور جب وہ بوڑھے میاں چچا آئیں گے تو چچا کو یہ کہیں گے کہ چچا देखो आज हज पूरा हो गया और हमें तो अल्लाह की तरफ से हज की सर्टिफिकेट भी मिल गई कि हमारा हज कबूल हो गया है, तुम्हारी सर्टिफिकेट कहाँ है? बेचारे चचा बहुत परेशान हो जाएंगे। अब वो चचा बेचारे हाँपते कांपते थककर बिल्कुल तवाफे विदा से फारिग होकर उनके पास आए, सबने चचा को मुबारकबाद दी कि चचा मुबारक हो, आपका हज हो गया और आप वो सर्टिफिकेट लेकर आए जो सर्टिफिकेट मिलती है। चचा ने कहा कौन सी सर्टिफिकेट की बात करते हो? कारे चचा आपका जब हज पूरा हुआ तो हज जब पूरा होता है तो हाजी को अल्लाह की तरफ से एक सनद मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलती है कि भाई तुम्हारा हज हो गया और हमने कबूल कर लिया, तुम्हारी सर्टिफिकेट कहाँ है? चचा ने कहा कि ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, बुढ़े को बनाते हो। अरे कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट नहीं मिलती, किसको मिली है कि जो मुझे मिलेगी? नौजवानों ने कहा चचा मजाक मत करो, अपनी सर्टिफिकेट बताओ। कहा भागो यहां से, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। नौजवानों ने कहा अजीब बात है, सब ने अपने जेब से कागज निकाल कर बताया कि देखो हजरत ये हमारी सर्टिफिकेट, ये मेरी, ये मेरी। अब जब चचा ने ये देखा कि ये तो सबके पास सर्टिफिकेट है, सबका हज कबूल हो गया और मैं खाली हाथ आया, बूढ़े मियां थे इनके दिल पर चोट लगी, उसी वक्त वहां से चिल्लाए या अल्लाह ये क्या हो गया और रोते हुए मताफ की तरफ दौड़े हैं। नौजवान पीछे से देखकर हंस रहे हैं, ये रोते रोते वहां पर गए, काबतुल्लाह के करीब पहुंचे, हतीम के पास गए, मिजाबे रहमत के नीचे गए और जाकर अल्लाह से कहा कि अल्लाह तूने सबका हज कबूल कर लिया, सबको तूने सर्टिफिकेट दे दिए, ए अल्लाह मेरी सर्टिफिकेट कहां है, मेरी कबूलियत क्या है? सारे लोग जो खड़े थे सब सोचने लगे ये बुड्ढे को हो क्या गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये रोए जा रहे, अल्लाह मैं जाऊंगा नहीं, मेरे हज को कबूल करना ही पड़ेगा, तुझे मुझे सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगी। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दिल की आहें निकल रही थी, दिल से खुदा को पुकार रहे थे, पीछे नौजवान देखकर हंस रहे हैं। उन नौजवानों का बयान है, वहां पर तवाफ करने वाले हाजियों का बयान है, हमारी निगाहों ने देखा ये चचा मिजाबे रहमत की तरफ निगाह उठाए, जोर जोर से रो रहे थे, सर्टिफिकेट का मुतालबा कर रहे थे, हमारी आंखों ने देखा मिजाबे रहमत से कागज का टुकड़ा नीचे आने लगा, एक कागज का टुकड़ा नीचे आया, इस चचा ने जब देखा चिल्लाने लगे आ हा 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 हा, आ गया आ गया, मेरी भी सर्टिफिकेट आ गई, मेरा भी हज कबूल हो गया। जैसे वो कागज का टुकड़ा करीब आया इन्होंने झपट लिया, बहुत खुश हुए, चूमने लगे, चूमते हुए वापस आए, नौजवानों को बताया मेरा भी हज कबूल हो गया, मुझे भी सर्टिफिकेट मिल गई। नौजवानों ने सोचा कोई कागज का टुकड़ा उड़कर ऊपर गया, इनके हाथ में आया, ये सर्टिफिकेट बनाकर लेकर आए। सारे नौजवान हंसने लगे, कहा चचा इधर आओ जरा अपनी सर्टिफिकेट तो बताओ। उन नौजवानों का बयान है, वो कागज का टुकड़ा हमने अपने हाथ में लिया, हमने खोला, वो कागज ही अजीब था, बड़ा नूरानी था। इन नौजवानों का बयान है, जब कागज हमने खोला उस पर ये जुमला लिखा हुआ देखा, या अब्दी कद तकब्बल तु हज का वबी हज का तकब्बल तु जमी हज जमी अल हुज्जाजे, या अब्दी तकब्बल तु हज का वबी हज का तकब्बल तु हज जमी अल हुज्जाजे, के ए मेरे बंदे मैंने तेरा हज कबूल कर लिया, ए मेरे बंदे मैंने तेरा हज कबूल कर लिया और तेरे हज के सदके में इस साल के सारे हाजियों का मैंने हज कबूल कर लिया, तेरे हज के सदके में मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो पैगाम था। तो मेरे भाइयों, जब यकीन होता है, ईमान होता है, सच्चे जज्बात और दिल से उसका नाम पुकारा जाता है, खुदा दुनिया में लब्बैक कहकर बताता है, आखिरत हमारी बना देता है, अल्लाह तबारक व ताला इस कलमे का यकीन हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला दिलो जान के साथ में, सच्चे यकीन के साथ में अल्लाह हमें ये कलमा पढ़ने वाला बनाए, कलमे पर यकीन करने वाला बनाए। और जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, हम दुआ करते हैं कि मौला जैसे दुनिया में तूने कलमा पढ़ाया है, कल मरते मरते भी हमारे जबान पर कलमा जारी कर देना। अल्लाह हम सबको कलमे वाली जिंदगी और कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।